इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई सफाई सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शाने हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी।
नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, दादी जानकी जी की उम्र से उनकी कार्य क्षमता की अनुमान लगाना संभव नहीं था। दादी जानकी जी ने बदलते समय के अनुसार अपने आप को ढाला था, इसलिए वो किसी चैंपियन से कम नहीं थी। नई टेक्नोलॉजी का भी दादी जी ने भरपूर रीति से इस्तेमाल किया और सीखा। चलिए आगे और जानते हैं दादी जानकी जी के विषय में आदरणीय करुणा भाई जी से। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। हम जैसे पिछले एपिसोड में आप चैनल की बात कर रहे थे, सेवाओं की बढ़ने की बात कर रहे थे, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप मीडिया के चीफ रहे हैं और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, और इस यज्ञ में आपकी सेवाओं को किस प्रकार से प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर कैसे ये सेवाएं बढ़ी, तो उसके विस्तार में आप थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें।
ओम शांति। 1960 में मैंने बताया ज्ञान में आया
जी,
तो बाबा को मीडिया द्वारा सेवा करना चाहिए ऐसी प्रेरणा बाबा देते रहते थे। तो मैंने प्रयास किया शिवरात्रि के ऊपर एक आर्टिकल लिखने का
जी,
और बैंगलोर में एक अंग्रेजी पेपर में मैंने उसको दिया, तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको छापा और उन्होंने 200 रुपया चेक भेजा था मुझे
जी।
तो मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये पहली बार है। तो मैंने वो बाबा को चेक भी भेजा और बाबा को कहा कि ये कटिंग्स बेचते हुए कि इस तरह से छापा है। तो बाबा ने मुझे इसके रिप्लाई में एक वरदान दिया, बच्चे आप 4 बजे उठो, बाबा को याद करो और बाद में पेन लेके आप लिखने शुरू करो, बाबा लिखवाएगा
जी।
तो आज तक भी मुझे कभी कभी कहते हैं कि भाई हम तो योग में बैठे हैं और आपका तो मैसेज आ रहा है, आपका मेल आ रहा है, तो कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। तो ये पहला बाबा का वरदान मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा सच्ची प्रिंटर्स ऐसा सच्ची गीता प्रिंटर्स ऐसा एक प्रिंटिंग मशीन भी लगाया और एक मैगजीन शुरू किया था ज्ञान विज्ञान का नाम से। तो ये पहला प्रयास मेरा मैसूर से शुरू किया था तो मीडिया का। इसके बाद 1971 में अबू पर्वत पर मुझे प्रकाशमणि दादी जी ने बुलाया, क्योंकि छोटेपन से ही भाषाओं पर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। क्योंकि मैंने ये देखा दक्षिण में जो चारों स्टेट में जो भाषाएं हैं तो वो एक दो वहाँ के लोग नहीं जानते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे जो फ्रांस में जाए या लंदन में जाए, अलग अलग भाषाएं हैं तो ऐसे। और जब तक आप उनकी भाषा नहीं जानते हैं, उनकी संस्कृति को भी नहीं जान सकते। तो इसलिए बचपन से ही भाषा सीखने का मुझे बाबा ने वरदान दिया। तो लगभग 12-13 भाषाएं तो भारतवर्ष के मैं बोलना उस समय पर सीख गया था।
अच्छा।
तो दादी जी वहाँ आए थे, जो पहला गवर्नर वीवी गिरी थे, वो कार्यक्रम में दोनों दादियाँ बेंगलोर में आए थे। उन्होंने मुझे वहाँ देखा, और जब म्यूजियम बना था यहाँ अबू में, तो उस म्यूजियम के जो मैनेजर थे तो उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उसके बाद दादी ने मुझे बुलाया कि भाई आप सभी भाषाएं जानते हैं, यहाँ सब भाषाओं के लोग आते हैं, तो आप यहाँ आ जाना। तो मेरी सेवा अबू आने का, ये जो म्यूजियम है वो हमारे लिए एक कारण बना
जी।
तो वहाँ से मैंने सेवा शुरू की। तो वहाँ कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें ये बहनों की संस्था, तो रोज देखता हूँ कुछ ना कुछ नेगेटिव अखबारों में आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है, ये अखबार वाले कौन है? तो मैं जब देखा कि जो पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते थे यहाँ, तो वो लोग जो भी वो लिख देते थे और वो छप के आ जाता था, और हमारी जो इतनी सारी मेहनत, इतनी बहनें यहाँ जो तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कुछ भी वो लोग लिख देते थे, ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा कि भाई अभी मुझे मीडिया के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। तो फिर मैं वापस मैसूर यूनिवर्सिटी में जा कर के वहाँ जो जर्नलिज्म का जो कोर्सेस है तो वो सारा स्टडी किया। और उसके बाद जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, लास्ट में मुझे UNI, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, उस समय पर इंडिया में बहुत प्रभावित थी एजेंसी, और वो विदेश में भी उसका बहुत प्रभाव था। तो मुझे उसमें अपॉइंटमेंट मिला, और मैं 96 तक लगातार इस न्यूज़ एजेंसी के साथ रहते हुए मैंने सेवा किया, और देश विदेश में जाने का भी मुझे मौका मिलता रहा। व्हाइट हाउस में भी 2 बार मुझे जाने का कवरेज के लिए, जिनेमा में भी कवरेज के लिए जाने का अवकाश मिला। तो इस प्रकार देश विदेश की जो मीडिया है, तो वो सेवा करने का मुझे ट्रेनिंग जैसे बाबा दे रहे थे। मुझे वो दिन याद आता है, तो सुबह मैं जैसे बैग लेके जाता था, शाम को वापस आता था, तो किसी को ये नहीं पता था कि भाई ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, और वहाँ के जो भी टेलीविज़न चैनल और रेडियो स्टेशंस और प्रिंट मीडियास थे, उन सब के एडिटर से मिलने का मुझे मौका मिला, और वहाँ की हर प्रकार की सेवाएं मैंने देखा। तो वो समय जैसे बाबा की सेवा को मीडिया किस तरह से करे और कैसे करे, इस पर हमारी बुद्धि चलता रहा। तो इसीलिए मैं जब वापस आबू आया तो हमारा एक ज्ञानामृत मैगजीन होता था, और इसके बाद फिर धीरे धीरे सारे मैगजीन्स आने लगे, और हमने भी 2-3 मैगजीन मीडिया विंग के तरफ से हम लोगों ने शुरू किया। तो इसके साथ साथ भारत में एकमात्र चैनल था दूरदर्शन, दूसरे कोई भी प्राइवेट चैनल को अलाउ नहीं करते थे। और एक शब्द भारत में होता था सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के नाम से, तो टेलीविजन में कभी धर्म की बात हम बोल नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं, भले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये कोई रिलीजन तो नहीं है, कोई कल्ट तो नहीं है, ये तो एक जीवन का एक पद्धति है, लाइफ स्टाइल है, जो हम आध्यात्मिक जीवी कैसे बने, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम लोग एक सनातनी कैसे बने, वो लाइफ स्टाइल हमको यहाँ सिखाया जाता है, परंतु टेलीविजन में वो नहीं आता था। तो मुझे याद है, तो मुझे बॉम्बे में ऐसे कुछ जो इस इंडस्ट्री के लोग साथ मिले, जो हम लोग बैंकॉक में जा कर के 5 ऐसे चैनल्स को वहाँ से शुरू किए, जो भारत वाले देखने शुरू कर दिए उसको। तो उसके बाद भारत ने पहली बार यहाँ आध्यात्मिक चैनल्स को या आध्यात्मिक के विषय में बोलने का स्वतंत्रता दी। तो जी चैनल उस समय पर जो पहला चैनल था, तो इस भारत में शुरू किया, और उसमें आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को पहला चांस दिया।
जी
सिनेमा जी चैनल था वो, और उसमें जागरण नाम से एक स्लॉट हमको दिया, तो इसमें हमारे शीलू दीदी का हमने वो शुरू किया, तो उसका इतना लोगों को अच्छा लगा, जैसे रामायण महाभारत के लिए जो एक टाइम पर हुआ था आप जानते हैं, तो इसी प्रकार भारत में आध्यात्मिक एक चैनल भी हो सकता है, तो वो एक भारत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय के ओर से ये कार्य पहले शुरू हुआ। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता रहा, क्योंकि उन दिनों में ऐसा लग रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री माना कॉस्टलीस्ट इंडस्ट्री ऐसे समझते थे, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स है, जो उसका जो कार्य करने की विधि है, तो उसमें बहुत पैसा लगता था, तो इसीलिए वो हम हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, परंतु सीखने का ज़रूर कोशिश किया कि 16mm 35mm और इसके बाद वीडियो में परिवर्तन हुआ, वो तो वो सारा हम लोगों ने धीरे 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 अभ्यास करते रहे। बॉम्बे में 3-3 मास 6-6 मास जाके रहना पड़ा मुझे, और फिल्म इंडस्ट्री में भी फिल्म सिटी में भी जाके रहता था, और वहाँ भी जो अनेक फिल्म्स जो बनते थे वो भी मैं देखता रहा। तो किस तरह से बाबा की इस ज्ञान को विश्व तक पहुँचाना हो, तो क्योंकि साकार बाबा की मुरली में मैंने सुना था कि एक दिन ऐसा आएगा बच्चे जो हर घर में बाबा दिखाई देगा, हर घर में बाबा दिखाई देगा, तो ये कैसे हो सकता है?
जी, जी।
बाबा हर घर में दिखाई देगा तो कोई सोच भी नहीं सकते थे, तो कि भाई इस तरह का जो आज आप देख रहे हैं कि कितने चैनल और कितने ये हर घर में, तो वो स्वप्न जो था, तो बाबा ने धीरे धीरे, जबकि पहली बार इंडिया में सुपर 8 का जो टेक्नोलॉजी आया, तो जो बाबा का ये कार्य को आगे बढ़ाने की हिम्मत आई, क्योंकि वो बहुत महंगा नहीं था, जो फर्स्ट टाइम पूरे फिल्म इंडस्ट्री एक सामान्य रूप से हम लोग बना सकते हैं, तो पूरे बॉम्बे इंडस्ट्री वाले मेरे ऊपर हंसते थे कि भाई ये क्या ले आया तुम, इतना छोटा सा, क्या इसमें कोई फिल्म बनेगा, इसमें कोई ये इंडस्ट्री का है ये, तो परंतु ये एक शुरुआत रही, तो जो हमने इसी से ही बैंकॉक से जाके जो चैनल्स शुरू किए, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हमको यहाँ भारत में तो आध्यात्मिक चैनल्स के लिए भी छुट्टी दी, और इस प्रकार बाबा का चैनल की संकल्प आया, परंतु इतना हिम्मत नहीं था कि एक चैनल चलाने का, क्योंकि उस टाइम पर बहुत महंगा होता था, तो सैटेलाइट चैनल्स करना माना इट वाज इम्पॉसिबल ऐसा लगता था मुझे कि भाई ये हम कैसे कर सकते हैं, परंतु बाबा के सहयोग से एक दिन मैं और निर्वर भाई नदी पे टहलने के लिए गए थे, तो उसी टाइम पर से एक संकल्प आया कि भाई हम लोग अभी कुछ सोचना चाहिए इस लाइन पर। तो इन्होंने, मैंने पूछा कि भाई क्या नाम आप सोचते हो, तो उन्होंने पीस ऑफ माइंड का नाम उस समय पर मुझे बताया, और उसी को लेकर के कुछ सहयोग भी उन्होंने उस समय पर दिया, तो मैं बॉम्बे में ट्राई कर लिया, क्योंकि सैटेलाइट पे जाने की तो हिम्मत भी नहीं था, उसका कॉस्ट तो हम सोच भी नहीं सकते थे, परंतु केवल केबल द्वारा वहाँ से हमने शुरू किया, तो लगभग ये 2 शतक से ये कार्य शुरू हो गया था इंडस्ट्री का, तो वो कार्य एक दिन जानकी दादी का आज हम बात कर रहे हैं, तो मीटिंग में बैठा था मैं, जानकी दादी मुझे देख रहे थे कि भाई ये चुपचाप बैठा है शांति से, क्या बात है, तो दादी के मुख से निकला, तो करुणा क्यों चुपचाप बैठे हैं, तो क्यों नहीं ऐसा कुछ सेवा करो जो भारत का जो ये जो संदेश है वो विश्व तक जा सके, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो कुछ करो, आपको जो चाहिए मैं दूंगी। तो सचमुच उनका जो शब्द था और उनका जो सहयोग था, उससे एकदम हिम्मत आई कि भाई हमको भी एक फुल प्लेजर चैनल शुरू करना चाहिए, और प्रिंट मीडिया भी उसको भी एक रूप रंग बदलना चाहिए। तो सचमुच एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन मीडिया में तब से शुरू हुआ। तो तो फिर हमने पहला चैनल हमारा रिलायंस में हम लोगों ने शुरू की थी, वो सैटेलाइट के रूप से वो चलाने की, और उसके बाद धीरे 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 बाबा ने यहाँ तक लाए हैं। आज सारे विश्व में जैसे समय टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, तो एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप कहो, मुझे वो भी बाबा की बात याद आती है, जो विज्ञान की प्रगति होगी बच्चे वो पहले आपके पास आएगा।
जी जी,
बाबा कहते थे मिनट मोटर, तो उन दिनों में तो एक एम्बेसडर गाड़ी या फिएट देखते थे सारे इंडिया में कितने सालों तक, परंतु जैसे रेवोल्यूशन हुआ तो आज आप देखते हो विश्व में, बाद में आता होगा, पहला सब कुछ यहाँ आता है। तो इसी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है मीडिया का, वो भी इतना फास्ट आने लग गया, तो जो भारत में प्रिंट मीडिया भी इतना फास्ट हो गया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत फास्ट हुआ, तो आज जो हम देख रहे हैं ये बाबा के आशीर्वाद से सारे इंडिया में हर भाषा में इस समय पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आगे जा रहे हैं, और हर एक बाबा के बच्चे ये जानते हैं कि मीडिया कितनी सेवा करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज आप हमारे से पूछ रहे हैं तो आज प्रैक्टिकली ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल डिजिटल से चल रहा है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चल रही है। हर एक के पास, चाहे मुरली है, चाहे तपस्या का है, चाहे गीतों का है, हर बात की जो है कम्युनिकेशन है वो पूरा टेक्नोलॉजी से इस समय पर चल रहा है, जिसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो ये सेवा करने का पूर्ण सहयोग मुझे जानकी दादी जी से मिला।
जी,
तो मुझे याद है प्रकाशमणि दादी जी लास्ट में 3 स्थान पर गई थी, पीस विलेज में और लंदन का नया मकान के लिए और ऑस्ट्रेलिया का भी विशेष सेवा था, तीनों लास्ट ट्रिप जो दादी ने किया था, तो मुझे साथ लेके गई थी और मुझे वहाँ का सारा अनुभव कराया था। तो जानकी दादी मुझे लंदन और अमेरिका की टूर पे थी, तो उस समय पर मेरे साथ एक ये हुआ, जो पहले मीडिया में एक बहन डिनिस बहन के नाम से यज्ञ में आज सब जानते हैं, तो वो मुझे पीस विलेज में मिली। तो मैंने जब जानकी दादी को कहा दादी ये बहन को मैं इंडिया में ले जाऊं, तो क्योंकि उस समय पर वो फ्री थी, तो दादी की बात याद आती है। तो जानकी दादी ने कहा तुम नहीं जानते हो विदेशी कैसे होते हैं, विदेशियों को कैसे चलाना है, ये इंडिया वाले जैसा नहीं है। तो मुझे बहुत डर आया, परंतु मुझे 83 से बाबा ने सारे विश्व का चक्कर लगाया था, और विशेष मुझे उस समय पर बताते थे तो जर्मन्स जो होते हैं ना वो सबसे टफ है ऐसा बोलते थे। तो मैंने कहा तो मुझे जर्मनी से ही ये टेक्नोलॉजी शुरू करना है, क्योंकि जर्मन उस समय पर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होते थे, तो इसीलिए हर साल जर्मनी भी जाता था। और डेनिस पेन का भी परिचय मुझे वहाँ जर्मनी में ही हुआ था, और वो उस समय पर BBC में मीडिया का करस्पॉन्डेंट थी। तो मैं इसीलिए सोचा कि भाई इस मीडिया को अभी विश्व में लाना, क्योंकि जानकी दादी सदा कहती थी कि भारत में क्या होता है विश्व में नहीं आता है, तो विश्व में क्या होता है वो भारत में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ करो तो जो दोनों जगह में होवे,
एक ही टाइम पे पहुंच जाए।
आज तो ऐसी अनुभव है, तो भारत का हर न्यूज देश में कहीं मिस भी हो सकता है पर विदेश में ये हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो उस समय पर जानकी दादी ने कहा था तो विदेश और देश एक कैसे हो, तो वो प्रयास हम करते रहे, और आज मैं देख रहा हूँ कि एक ही मुरली जो हम इंडिया में पढ़ रहे हैं वो सारे विदेश में सभी एक ही वही मुरली पढ़ रहे हैं यही मीडिया के द्वारा। तो इस तरह से हमारा एक ही प्रयास है जो मीडिया है इसको विश्व का एक करने में बहुत सहयोगी रहा है, और यही हमको करना है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की भाषा या कोई भी चीज़ अंतर हो, परंतु ईश्वरीय ज्ञान में बाबा का जो लक्ष्य है एक ईश्वर एक विश्व और एक परिवार, ये बात को लक्ष्य में रखते हुए तो हमको पूरे विश्व में इसको प्रचार करने में, आज हम कहते हैं 140 देशों में ये कार्य चल रहा है, तो इसका कारण एक ही है, क्योंकि हम सब एक ही बोली बोलते हैं, हम सब एक ही सोचते हैं और हम सब पढ़ते भी एक ही है, तो इसीलिए ये सारा कार्य धीरे धीरे अभी तक यहाँ तक पहुँची है, तो मुझे विश्वास है कि अंत तक हम मीडिया द्वारा ये बाबा का जो संदेश है सारे विश्व में हम दे सकते हैं। जो चीज़ हम नहीं सिखा पाए थे तो वो भी आज, जैसे सोशल डिस्टेंस जो कहते हैं, तो जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं पवित्रता, शुद्धता, भारत में किस तरह से जो लोग जी रहे हैं तो एक दो को रेस्पेक्टफुली, तो वो अभी जैसे समय भी सिखा रहा है और मीडिया द्वारा भी ये शिक्षा सबको सिखाया जाता है। तो जब भी लोगों ने कहा कि भाई हाथ मिलाओ नहीं नमस्ते करो, तो मुझे याद आया देखो बाबा कैसे भारतीय सनातन संस्कृति को धीरे धीरे सारे विश्व में वो बना रहे हैं और सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये भी एक मीडिया का पूरा उपयोग जो हो रहा है
उसी के
तो,
बारे में हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं।
जी,
जैसे जब दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा तो भी सारे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ था और सबके लिए बहुत दुविधा जैसी सिचुएशन थी कि इतनी बड़ी संस्था की दादी है, हेड है, और वो शरीर का त्याग करे और किसी को आने की अनुमति नहीं, कहीं से भी आने की अनुमति नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या आभास किया कि किस प्रकार का वातावरण था सब जगह और वो परिस्थिति को कैसे ओवरकम किया?
देखिए जानकी दादी
जी
के समय पर जानकी दादी में कुछ विशेषता थी जो मैं बोलना चाहता हूँ। जानकी दादी सिंपल, सरल
जी,
वो इनका एक लाइफस्टाइल हमने देखा था।
जी,
इकोनॉमी, एक नामी, ये दो शब्द इनका जैसे हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप, उसको देखते ही ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे इकोनॉमी क्या होता है, एक नामी क्या होता है, वो जानकी दादी का हम लोगों को पाठ था।
जी।
जानकी दादी भी कई बार ये कहते थे, दादी 104 साल के हैं, तो दादी हंसती थी, तो मैं भी यही चाहती थी कि इस विश्व का जो अंत कैसे होगा, या शुद्धता जैसे आपने कहा कि दादी को एक एम्बेसडर बनाया था स्वच्छता की, तो ऐसे ये भारत ऐसा एक स्वच्छ भूमि जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्णिम युग कहते हैं, तो वो कैसे होगा वो मैं देख के जाऊंगी, इसीलिए बाबा मुझे रखा है, तो ऐसा कभी कभी हंसते कहती थी। और सचमुच ऐसा हो गया जो देखा सारा विश्व में, एक दो को कहते हैं दूर रहो दूर रहो, एक प्योरिटी समझो या एक ऐसी स्थिति बन गई सारा विश्व को जैसे सैनिटाइज करो, हर चीज को शुद्ध बनाओ, हर चीज को शुद्ध करो, तो इस तरह की एक समय रहा। तो एक दो के पास ना कोई जा सकते हैं ना कोई आ सकते हैं। मुझे दो दिन पहले एक भाई कह रहे थे कि दादी, जानकी दादी के लिए तो 1,00,000 लोग आ जाते थे, परंतु ऐसा हो गया जो एक भी नहीं आ पाए, जो लोग यहाँ थे यहाँ रह गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि दादी का जो दोनों संकल्प, एक तो एक सृष्टि की महापरिवर्तन, इसको भले महामारी कहते हैं महा ये कहते हैं, परंतु एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो जीवन में, जैसे परिवार एक साथ होके रहने का, और सभी देशों में चाहे वो कितने भी साहूकार हो कितने भी गरीब हो, तो सबको एक जैसा एक भावना आने का, इस तरह की बहुत कुछ इस दुनिया में हम लोग अभी चेंज देख रहे हैं। वो जो दादी सोचती थी कि भैया ऐसे समय भी मैं देखूंगी, तो वो भी दादी ने देखी, और ये भी चाहती थी कि भाई मेरे कारण इतने सारे लोग नहीं आना है और कोई भी खर्चा नहीं करना है। दादी कहती थी मेरे पास देखो एक पाई भी नहीं है, तो वो बहुत ही इकोनॉमी का करती थी, और वो प्रैक्टिकली हमने दादी का शरीर छोड़ने का जो स्थिति है वो हमने देखा। तो उन्होंने अपना संकल्प को पूर्ण किया, अभी हम लोग भी उसको याद कर रहे हैं, हम लोग अभी अखंड तपस्या आदि कर रहे हैं
जी।
तो हम लोग भी अपने अंदर इस समय पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अकेले आए अकेले जाना है, मनमना भव मध्याजी भव का रियल एक्सपीरियंस जो है वो इस समय पर हम लोगों को बाबा करा रहा है
जी। अभी जी। जब सब कुछ जैसे हम देख रहे हैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो अभी आपको क्या लगता है दादी के जाने के बाद सेवाएं और किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती हैं?
देखिए मेरा अनुभव यह है, भले मीडिया ही हो, मीडिया से एक कमी तो होता है
जी,
कि मीडिया मोस्टली यूज करते हैं इस समय पर दुनिया में अपने अपने पर्सनालिटी को दिखाने में।
जी जी,
हर एक को जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस, अपना कॉन्शियसनेस और उसका जैसे पूरा यहाँ दिख रहा है, परंतु हम समझते हैं कि हमारा जो पहला लेसन है इस संस्था में कोई भी आते हैं तो उनको हम यही कहते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हो, और आत्मा पूछ के नहीं आई, पूछ के नहीं जाता है,
जी,
अकेले आए अकेले जाना है। तो इस समय पर हम समझते हैं कि हमको जैसे दादी जब थी तभी भी ऐसी अवस्था थी उनका, भले कोई भी दादी के साथ है फिर भी दादी अकेली ही महसूस होती थी, और गई भी ऐसा जैसे अकेली गई है। तो इसीलिए हम सबको भी इस समय पर, दादी भाषण में भी बहुत होशियार थी, दादी जितना पॉइंट्स याद करे और बोले बहुत कम है हमारे ऐसे भाई बहने, तो फिर भी हम लोगों को इस समय पर अपने लाइफ स्टाइल से, जैसे दादी जी का लाइफ देखते ही कोई भी देश का प्रेसिडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो तुरंत दादी के सामने नतमस्तक हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ हमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हमारी जो भाई बहने हैं इस समय पर, हम सबको भी अभी अपनी जीवन से लोगों को प्रभावित करना है, न कि भाषण से या ज्ञान से। ज्ञान तो सुनाना ही पड़ता है, परंतु प्रभाव जो होना चाहिए वो हमारे जीवन से है। वो तब हो सकता है जब हम थोड़ा सा पावर ऑफ साइलेंस को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि साइंस बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए तो साइलेंस को भी हम सब मिल करके, जैसे एक ही लेसन सारे विश्व में पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार एक ही साइलेंस को ऊपर हम सब अब कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे तो विश्व परिवर्तन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा लगता है।
जी भ्राता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गहराई वाली बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि अभी आने वाले समय में पावर ऑफ साइलेंस के द्वारा सेवाएं बढ़ेंगी, और दादी जी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने नॉन बिलीवर्स को बिलीवर्स में कन्वर्ट किया। दादी जी के संपर्क में जो भी आता वो एक नई ऊर्जा, नए उमंग से भर जाता, और क्यों ना हो, दादी जी के पास सबको संतुष्ट करने की चाबी जो थी। दादी जी से जुड़े ऐसे और भी अनुभव हम आपके साथ बांटने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।